Sen sesin.
Ya var.
İngiliz var, İngiliz. Ikodasu banana jata. वो अजामिल का उपाख्यान अभी हम लोग वर्णन कर रहे हैं. वो अजामिल का विषय है, पहले ब्राह्मण बालक, सब ब्राह्मण का गुण उसमें था. वो ब्राह्मण का गुण जो है उसको बताया गया है, अयं हि सुत संपन्न. ये व्यक्ति जब बालक था, ये युवक था, उनका शादी हो गया था, तो सुत संपन्न. सुत का अर्थ होता है वेद का ज्ञान. वेद का नाम है श्रुति, और जो वेद का ज्ञान सुन के लाभ किया है उसको कहा जाता है श्रोत्रियम और श्रुत. जो वेद का ज्ञान सुना है गुरु, ये सुनने का चीज है. पहले सुने, ये जो हम लोग सत्संग चला रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि वेद का जो ज्ञान है उसको आप लोग खा करके सुने, सुनते सुनते ज्ञान लाभ होगा. पढ़ने का भी जरूरत नहीं है. कोई अगर पढ़ने को लिखने को नहीं जानता है तो उसको ज्ञान कैसा होगा? सुन के होगा, भगवान काम दिया है. असल में पहले वेद का ज्ञान सब कोई गुरु से सुन करके ही सीखता था. लिखित पुस्तक नहीं था. लिखित पुस्तक ये कलयुग का प्रारंभ है. व्यासदेव देखा कि कलयुग में स्मरण शक्ति कम हो जाएगा, इसीलिए केवल सुन करके उसका ज्ञान लाभ नहीं होगा. तो किताब पढ़ना चाहिए, रखना चाहिए, इसलिए हम लोग इतनी किताबें छप रहा हूँ. केवल इधर कभी कभी आप लोग आए सुन करके चले गए, उसमें काम नहीं बनेगा. किताब पढ़िए, किताब पढ़ने से वेद का ज्ञान लाभ होगा. इसलिए ये जो ब्राह्मण बालक अजामिल, आज इनकी इतनी दुर्दशा हुई है, उसका कारण ये यमराज का जो दूत है बता रहे हैं कि ये व्यक्ति पहले जैसा ब्राह्मण का गुण होना चाहिए तो सब उनका था. क्या है? न सुत संपन्न, अच्छी तरह से वेद का ज्ञान सुना हुआ था. संपन्न, संपन्न माने आखिरी तक सुना था चार वेद का विषय. और शील वित्त गुणालय, और व्यवहारिक काम में भी बड़ा सज्जन और सद्गुण सब में था. शील सत्व गुणालय धितव्रत, और धितव्रत का अर्थ होता है जो काम करना है उसको व्रत धारण के किया जाए, यानी फुल डिटर्मिनेशन. धितव्रत, भगवत गीता में भगवान कहते हैं महात्मा बांग प्रार्थी महा भजंती धीरव्रत. देवाड़ी ये शब्द का होता है विरव्रत और विरव्रत. विर मीन निश्चित, सवेरे 4 बजे उठना है निश्चित, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कोई 4 बजे उठा और कोई नहीं उठा, नहीं, रोजाना अवश्य उठना चाहिए 4 बजे. उसका नाम है विरव्रत और विरव्रत. नहीं, ये ऑकेजनली कभी कभी हम उठ जाते चार बजे, नहीं रोजाना उठना चाहिए, ये ब्राह्मण का काम है। धितव्यता मिलू, बड़ा शांत स्वभाव, दांत अपना इंद्रियों को दमन करके रखना, ये ब्राह्मण का काम है। समा दम मन को स्थिर रखना, इंद्रियों को स्थिर रखना, समा दम तितिक्षा, ये सब सीखना चाहिए। तो इसीलिए बताया था मृदु दांत सत्यवान, सत्यवान का अर्थ होता है कभी झूठ नहीं बोलता। सत्यवान मंत्र भी और वेद का मंत्र साहब कंठस्थ और सूची, बड़ा सूची संपन्न, नीट एंड क्लीन, राइस टेकिंग बाथ, तीन दफे स्नान करते हैं, कपड़ा और शरीर खूब शुद्ध रखते हैं, और गुरु अग्नि अतिथि विद्याना, ये तीन वस्तु को सत्कार करना, गुरु को देख करके ही नमस्कार करना चाहिए, दंडमत। और अग्नि इन्हें रोजाना यज्ञ करना चाहिए, और अतिथि कोई व्यक्ति अचानक घर में आ जाए उनकी सेवा करनी चाहिए, और विद्यालय और विशेष करके वृद्ध व्यक्ति को खूब अच्छी तरह से सम्मान करना, उसको संतुष्ट करना, ये सब गुण है। और सुशुषु अनहंकृत, ये ब्राह्मण बालक ये सब करते थे और अहंकार भी नहीं, जहां इतना करने वाला है, अनहंकृत सर्वभूत सुहित और सबके लिए सुरेश, यानी उसको अच्छा सोचना, सबके लिए सबका मंगल हो, सर्वे सुखी न भवंतु, ये सा मनुष्य का सद्गुण है। साधु और साधु एक शब्द का अनेक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा अर्थ है, संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। तो साधु, साधु का अर्थ होता है भगवत भक्त, भगवान ने से बताया है भगवत गीता में, साधु रे वो समन्तव्य। साधु का अर्थ होता है कौन, भजते माम अनन्न भाव, अपनी चेत सुदुराचार भजते माम अनन्न भाव, साधु रे वो समन्तव्य, जो कि भगवत भक्त है, भगवत सेवा छोड़ करके और दूसरा काम उनका नहीं है, उसका नाम है साधु। ये साधु शब्द भी आया है। मितोवाद और ज्यादा अनशन वक्ता नहीं, ये भक्त का उचित है कि केवल भगवान का ही नाम कीर्तन करें, अनशन बकने से खाली परमायु हानि होती है, उसमें कुछ लाभ नहीं है। इसलिए साथ में कहता है वाचांशी वैकुंठ गुणानुबंधन, यदि आप बात करें बातचीत करें तो वैकुंठ तो जो भगवान है उनका विषय था, वो सिनेमा एक्ट्रेस का विषय नहीं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अगर बातचीत करें श्रवण किसी का विषय श्रवण करना है तो भगवान विष्णु का विषय श्रवण कीजिए, और किसी का विषय कुछ बोलना है तो वो भगवान का विषय ही बोलिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु वाचांसी वैकुंठ गुणानुबंध सबई मन कृष्ण पदारविंद, इसका नाम है कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना अमृत, ये सब समय मन को भगवान का चरण में लगा के रखना। और भगवान खुद बताते हैं मन मना भगवान भक्त मत जाजी मांग नमस्कुरु, तो इसका नाम है जो कृष्ण कॉन्शियस में, ये चार बार सब समय भगवान का चिंतन करना। इसलिए हम लोग सबसे अनुरोध करते हैं कि हरे कृष्णा नाम जपाती तो मन भगवान में लगेगा, हरे कृष्णा कृष्णा नाम तो सुन रहा है ना, तो सुनने से मन जाएगा उधर, ये मेडिटेशन है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे मनमना वो करेगा कौन मद भक्त मनमना भव मद भक्त बिना भक्त हुए वो हरे कृष्ण क्यों जप रहे तो मनमना भव मद भक्त मद जागी मुझको पूजा करो इसलिए भगवान खुद आए हैं मंदिर में खूब अच्छे से सजाओ भगवान को फूल चढ़ाओ भगवान को भोग लगाओ प्रसाद खाओ ये सब शास्त्र ने विधान दिया है मन मना भव मद भक्तो मदयाजी मांग नमस्कुरु अगर कुछ नहीं कर सकते हो एक दफे आकर के नमस्कार करके जाओ बहुत सरल है कोई मुश्किल नहीं है बाकी हम लोग करने को नहीं चाहते हम लोग कहते हैं चलो जी मंदिर में जाके क्या होगा चलो रेस्टोरेंट में चलो एक कप चाह पिया जाए बीड़ी फूका जाए ये सब दुर्दशा क्यों ना हो तो शास्त्र में जो विधि है उसको हम लोग मानते नहीं उसको उल्लंघन करते हैं तो उसको कभी सुख मिल सकता है नहीं दशास्त्र विधि से जब वर्तते ही काम का न सुखम सहबानती उसको कभी सुख नहीं मिलेगा शास्त्र विधि को उल्लंघन करेंगे और हम सुखी रहेंगे ये संभव नहीं है तो ये बालक ब्राह्मण बालक ये युवक 20-25 वर्ष उम्र ये सब चीज सीख लिया था ब्राह्मण का घर में जन्म लेने का उपकार क्या है दूसरे को सीखने पड़ता है और ब्राह्मण का घर में जन्म होने से पिता माता का आचरण देख करके खुद ही सीख जाता ये उपकार है और ब्राह्मण का घर में जन्म हुआ और पिता माता का भी ब्राह्मण का आचार नहीं है तो बालक कैसे सीखे और उसको सिखाया भी नहीं जाता स्कूल कॉलेज में भी तो ये पतन हो गया तो पतन होने का बहुत कारण है और एक कारण ये बता रहा है कि एकदा असौ वो जो अजाने ब्राह्मण कुमार एक दफे बनंग जात वन में गया था कि एक दिन नहीं ये ब्राह्मण का काम है जो वन में बगीचा में जा करके भगवान के लिए सब पुष्पादि संग्रह करे भगवान बोलता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मी भक्त्या प्रजच्छति भगवान को अर्चन करने के लिए कोई ज्यादा खर्च नहीं है जो खर्च कर सके वो खर्च करे खूब अच्छी तरह से और जिसका पास पैसा है नहीं खर्च नहीं कर सकता है उसके लिए भगवान राजी है जो थोड़ा सा पत्र हमको दो थोड़ा सा पुष्प हमको दो भगवान नहीं बोलता है कि हम तो सोना के थाली में लूची पूरी कचौड़ी लिया कर भगवान खाने का बहुत है उनको खाने के लिए कोई अभाव नहीं है उनको कहते हैं चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षापितेषु सुरभि अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से भगवान की सेवा करने के लिए शत सहस्र हजारों लक्ष्मी गौरे सब फर्च सब सेवा करने के लिए तैयार तो भगवान का कुछ अभाव नहीं है भगवान ये बम्बई में जुहू में आके बैठ गए हैं ये बेचारी खाने को है नहीं इधर आपसे मांगने को आया ये बात नहीं बात यह है कृपा करके आए हैं कि आप लोग मनमना भव मद भक्त मद्यादि मांग नमस्कुरु ये सुविधाएं आपको देने के लिए आए हैं और आप लोग चाहते हैं ये मंदिर किसी तरह से नहीं बने भगवान उधर बैठ नहीं सकते ये आपकी प्रतिज्ञा है भगवान मित्र आए हैं आपको सुविधा देने के लिए और आप लोग कृतन निश्चय है कि इधर मंदिर तो होने को नहीं देंगे जब कीर्तन हो पुलिस में एप्लीकेशन दो और पुलिस का कहे कि कीर्तन इज नॉनसेंस ये परिस्थिति है इसका नाम है कलयुग जो भगवान कहते हैं जदा जदा ही धर्म सज्ञानी भवती भारत तदात्मानं सृजामि अहम्। कि धर्म की ज्ञानी जब हो तब हम खुद आते हैं कि हमारा कोई परम भक्त को भेजते हैं सुनते उद्धार करने के लिए, और वो बेचारी आए भी तो आप लोग उसको बैठने को नहीं देंगे। ये परिस्थिति है। तो ये बालक ब्राह्मण, बालक ब्राह्मण का सब गुण वो था, लाभ क्या था, परंतु एक दिन एक वन में जाता, वो वन में जाने का समय है, इसलिए वन में जाते हैं पृथ्वी संदेश आपके जीज पिताजी घर में बैठ के भगवान की अर्चना कर रहे हैं और पिताजी आदेश दिया है बेटा ये सब फूल और घास और तृण ये सब लिया। ब्राह्मण है उनके पास ज्यादा तो पैसा है नहीं, बाकी भगवान कहते हैं शाम को पत्र पुष्प दो, पैसा है नहीं तो क्या हो, पत्र पुष्प तो कहीं भी मिल जाएगा, घर में भी मिल सकता है, घर का बाहर में भी मिल सकता है, ये कोई बात नहीं है। जो लूची पूरी हलवा देने से भगवान संतुष्ट रहेंगे नहीं, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम जोमी भक्त्या प्रदर्शित तद हम मसनामी, मैं इसको ग्रहण करता हूँ खाता हूँ, और भगवान आपका हाथ में एक दफे खा लिया तो फिर आपको क्या अभाव होगा, तब तो आप सबसे बड़ा आदमी हो क्या। ये सब उदाहरण है। जो भगवान एक दफे जिसका हाथ से खा लिया था उसको कभी दारिद्रता नहीं रहेगा, शास्त्र में बताते हैं। आजकल सब कोई हम लोग को पूछते हैं कि भगवत भजन करके क्या होगा, आदमी सब गरीब है और उसको पहले खाने को चाहिए, और हम लोग एडवर्टाइज करते हैं जिसको खाने के लिए कोई स्थान नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है और रहने का जगह नहीं है, आइए हमारा पास, हम बम्बई में और अच्छी तरह से मकान बना रहे हैं, सब आइए रहिए, बाकी कोई नहीं है, हमको परदेश से आदमी लाने पड़ता है मंदिर चलाने के लिए, कोई आते ये बहुत खेद का बात है। जो भारतीय कृष्टिया है उसमें भारतीय कोई आता नहीं, वो मिल में जाता है, विदर नहीं आता, तो हम लोग क्या कर, हम लोग तो खुशामदी कर रहे हैं, जाइए इधर रहिए, इधर भगवान का प्रसाद खाइए और कीर्तन कीजिए और सब चीज आपको मिल जाए, भगवान खुद कहते हैं श्रीराम नित्याभिजुक्ता नाम जोगो किम वहां कोई फर्स्ट नाइट अनन्न चिंतन तरमान जी जन आपस तेषाम नित्याभिजुक्तानाम योगक्षेमं वहामि अहम्। यदि आप अनन्य चिंता केवल भगवान की चिंतन में निजुक्त रहे, अनन्य चिंतन अनन्य चिंतन तेषा कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो हम लोग सिखाते हैं, तो अनन्य चिंतन सब समय 24 आवर्स 24 घंटा केवल भगवान का चिंतन और कोई चिंतन, जो कुछ काम किया जाए सब भगवान के लिए। इधर होता है एक्चुअली, आप लोग सब देखिए, हम लोग ऐसे नहीं है बैठ के रहते हैं सोते हैं, नहीं हम लोग मंदिर मार्जन करते हैं, भगवान को सजाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, और भोग लगाने के लिए अच्छी तरह से रसोई करते हैं और रसोई के लिए चीज हम मांग के ले आते हैं, और भगवान के लिए किताब लिखते हैं और किताब लिखी छपाते हैं, प्रेस में जाते हैं, फिर कैसे अच्छी तरह से किताब छपा दिया देखता है, फिर उसको बेचने के लिए कोशिश करते हैं, इसीलिए 24 घंटा हम लोग का एंगेजमेंट है, 24 आवर्स, एक मिनट भी समय नहीं, इसका नाम है अनन्य चिंता, और कुछ चिंता नहीं है, केवल भगवान का विषय। जैसा साधारण व्यक्ति उस समय अपना घर गृहस्थी का चिंतन करते हैं, किस तरह से अपना गृहस्थी को पालन किया जाए, किस तरह से लड़का बच्चों को शिक्षण दिया जाए, किस तरह से रुपया उपार्जन किया जाए, ये जैसा उनका चिंतन है, हम लोग का भी ऐसी चिंतन है, बाकी भगवान की। भगवान का मंदिर किस तरह से बनेगा, इतना क्यों लड़ाई हम लोग इधर करते हैं। हमारा 108 मंदिर है और एक अगर इधर नहीं हुआ तो 107 तो जरूर रह जाएगा, तो उसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं है। बाकी हम लोग सोचते हैं जो ये भगवान का मंदिर बम्बई इतना बड़ा भारी शहर है, क्यों अच्छी तरह से नहीं बनाया, ये हम लोग का चिंता। बाकी बाधाएं देते हैं, नहीं तुमको नहीं देगा तो बाधाएं देने होने दीजिए, ताकि हम लोग चिंतन नहीं छोड़ेंगे। हमारा चिंतन चले, ये हमारा काम है। उसमें सफल होए और नहीं सफल होए वो चिंतन है। सफल होगा भगवान की इच्छा होगा, दूसरे तुम इच्छा होगी तो सफल होगा, और नहीं होगा तो हमारे क्या, भगवान का काम, भगवान तो करने को नहीं दिया, तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं। तो ये इसका नाम है मन मना मम भक्त। ये इतना प्रयास कौन करेगा अगर भक्त नहीं हुआ, वो लोग छोड़ देगा, बोले क्यों इतना झंझट में जाया जाए। चलो जी इतना टाइम तो कुछ शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन करने से कुछ रुपया पैदा हो जाए, तो ये भक्त ही कर सकता है। मन मना भगवत भक्त, इसलिए भगवान कहते हैं भगवत भक्त, क्योंकि उसका चिंतन सब समय है और वही सबसे बड़ा योगी है। जो भगवान का चिंतन किसी तरह से तीनों तीनों प्रकार, ये चैतन्य महापुरुष का फिलोसफी है, किसी तरह से जीनो तेनो प्रकार मन कृष्ण निवेश है, किसी तरह से मन जो है उसको भगवान का चरण में लगाए, ये कृष्ण पांच रश्मे सुलगा। तो हर किस्म का काम इधर है, कोई काम मान लीजिए उसमें कृष्ण सेंटर, इसलिए वो मन मना भगवत भक्त, वो भक्त हो गया और मन सब समय भगवान का चरण में उसको लगा। तो उसके लिए भगवान खुद कहते हैं जो ईश्वर का जो व्यक्ति है सब समय हमारा चिंतन करते हैं, उसको कोई अभाव नहीं रहेगा, उसका अभाव का विषय है मैं खुद देखूंगा। तेषां नित्याभिजुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्, व्हाट एवर नेसेसिटी इज देयर गॉड कृष्ण इज डूइंग पर्सनली, यस यू टेक इट। एंड एक्चुअली आप लोग देखिए सब, हमारा 108 मंदिर है सारा दुनिया में, और एक एक मंदिर में 50 से कम नहीं 200 250 300 तक है भक्त, और समझ लीजिए कितना भक्त है 108 मंदिर में सारा दुनिया में। लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में दो है, एडिनबर्ग में है, और लॉस एंजलिस में है, बॉस्टन में है, अमेरिका में 40 है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, सब जगह में है। बाकी कोई भी मंदिर में आप लोग जाइए देखिएगा, कुछ अभाव नहीं है। जो वो फेमंग वहां में हम, ये प्रैक्टिकल है, ये थियोरिटिकल नहीं है जो हम लोग धोखा देते हैं, बात बताते हैं। आप जाइए मुंबई में देखिए कितना परेशान हम लोग हो रहा है, बाकी हमारा सेवा पूजा चल रहा है। अगर मंदिर बनाने को नहीं भी दे तो हमारा सेवा पूजा तो चल रहा है, उसमें हमारा नुकसान कोई नहीं है। बाकी जो लोग बाधा देते हैं उनको नुकसान होगा, जरूर होगा, ये भगवान कभी सहन नहीं करेंगे। तो ये सब होनी चाहिए भारत में, विशेष करके ये, क्योंकि भारत ही संपत्ति है भगवत भक्ति। भगवत भक्ति जो है विशेष करके भारतवर्ष में ही है, इसलिए देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको फिर भारतवर्ष में जन्म दीजिए, इस आश्रम में। भारत भूमि ऐसी है पुण्य भूमि कि इधर इधर में जिसका जन्म हुआ है वो स्वाभाविक तौर से ही भक्त होते हैं, उसको जबरदस्ती उसको अभक्त बनाया जाता है। अभी तक जब हम लोग कोई संकीर्तन मूवमेंट किसी शहर में करते हैं, आप लोग देखा होगा मुंबई में हम लोग वो व्हाट इज दैट प्लेस रक्षास मैदान में 2-3 दफे किया था, तो 30,000-40,000 व्यक्ति सब आते थे। कलकत्ता में किया था उधर भी गई, हैदराबाद में किया था, मद्रास में किया था। तो अभी तक भगवत भक्ति भारतीय लोग भूला नहीं है, उनको जबरदस्ती भुलाया जाता है। तो भूला नहीं, इसको छोड़ना नहीं, फिर मनुष्य जीवन का असफलता हो जाएगा। ये नहीं, मनुष्य जीवन का सफलता चाहते हैं तो ये भगवत भक्ति अवश्य ग्रहण किया जाए। भगवत भक्ति हीन जाति गवस तप क्रिया अप्राणस्य ही देह समन्ननं लोकरंजन। भगवत भक्ति जिसका है नहीं, उनको बड़ा जाति और जपस तप और स्थिति तपस्या और क्रियाकांड ये सब कैसी है, दे अप्राणस्य ही देह समन्ननं लोकरंजन। जैसा मुर्दा को सजाया जाता है, मुर्दा को सजाने से मुर्दा का क्या लाभ होता, कुछ नहीं लाभ होता, न किसी का लाभ होता। लोक रंजन, एक लोक रंजन है। देखो जी, मुद्दा को कैसा सजा के ले जा रहा है, आगे तारीफ होगा, देखो जी। पर उसमें लाभ कुछ नहीं है। इसी प्रकार आप खूब बड़ा जाति बन जाइए और बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाइए, सबको बड़ा बड़ा बन जाइए, और भगवत भक्ति है नहीं तो वही मुर्दा सजाने के लिए जैसा होता है वो होता, क्योंकि भगवत भक्ति नहीं छोड़ने से। और ये भगवत भक्ति जो अजाने पिता का निर्देश अनुसार कहते हैं चित्री सन्द्री सकृत बीज, ये ब्राह्मण का लक्षण है। जो पिताजी पूजा में बैठे हुए हैं और पिताजी ऑर्डर दिया है आज्ञा जो बेटा थोड़ा फूल फल ले आओ और भगवान की सेवा में लगाएंगे, और बीज ये बीज का काम है। आदाय तथा आवृत्य फल पुष्प समित कुशान, और पिता का निर्देश अनुसार वो बालक फल फूल और समित यानी कुश ये सब लेकर के आ रहे थे वन से। और रास्ता में क्या देखा है कि ददर्शा कामिनं कष्टि, एक कामी पुरुष को देखा। कामी माने शूद्र, शूद्र होता है कामी, और ब्राह्मण होता है संयम, काम को संयमन कर, समा। अगर कोई व्यक्ति काम लक्ष्य डिजायर को दमन नहीं कर सकता है वो शूद्र, और जो दमन कर सकता है वो ब्राह्मण है, वो स्वामी है, वो गोस्वामी है। स्वामी का अर्थ होता है मालिक, गोस्वामी का अर्थ होता है जो इंद्रियों का मालिक, साधारणतः इंद्रियों का दास होता है। जीवा है एक इंद्रिय, वो बोला जी एक बीड़ी हमको दीजिए, जीवा सुख गया है तो जीवा का बुद्धि देना चाहिए। इसका माने है मैं जो है जीवा का दास है। जीवा बीड़ी मांग रहे हैं, सिगरेट मांग रहे हैं, काम भी उसको दे रहे हैं। इसके बाद हम तो समझते हैं मालिक है इंडिपेंडेंट, बाकी हम जीवा का दास है। और जब अब जीवा का दास नहीं होंगे, जीवा बोलता है हमको बीड़ी दीजिए, आप जब बोलेंगे नहीं बीड़ी, तब अब जीवा का दास नहीं, गो का दास नहीं है, गो का स्वामी है, गोशान, उसका नाम है गोशान। जीवा एक इंद्र है, इंद्र का नाम होता है गो, और जब गो का दास हो जाते हैं तो गो दास, और जब गो का स्वामी हो जाते हैं तो गोस्वामी। इसका नाम गोस्वामी ये नहीं है तो नाम में तो गोस्वामी है और है बीड़ी का दास, ऐसे काम नहीं चलेगा। गोस्वामी का अर्थ होता है जो गो का स्वामी है। स्वामी जो टाइटल दिया जाता है सन्यासी को, इसका मतलब है जो सब इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रिय का दास नहीं है। इसी प्रकार कहते हैं आदाय तथा फल पुष्प मित्र संग ददर्श कामिना कुछ कामिना लस्ती लस्ती में, दैट मीन शूद्र, एक शूद्र को देखा। कामिनं कति क्षुद्रं, शूद्र बता दिया सह पटे क्षुद्रम सह उदितया पित्या का मधुमौरेयम मदा घूर्णित नेत्र। देखा जो एक औरत शूद्राणी दोनों ही शराब पिया था, मद घूर्णिता, मद का होता है शराब और उसमें ब्रेन पैदल हुआ गया था, मद घूर्णिता। पित्या का मधुमौरेयम मदा घूर्णित नेत्र आग भी घूम रहा था, बहुत अच्छी तरह से पिया हुआ था शराब। आजकल तो इसमें इंकरेजमेंट दिया जाता है, जाइए इधर शराब का दुकान है, बाकी सब शूद्र का काम है, ये ब्राह्मण का काम नहीं है, ये शूद्र का काम है। मतया श्रित विस्तृत निद्या और वो कपड़े भी सब ढीला हो गया था। विस्तृत निद्या विपरीत निरपत्र और दोनों मिलकर के वो आलिंगन चुंबन आदि सब कर रहे थे पब्लिक रोड में निरपत्र को, कोई लज्जा नहीं, बिल्कुल लज्जा नहीं, निरपत्र चिरंतम अनुभवंतम ऐसे सब काम कर रहे थे। और वो सिनेमा का गान भी गाते थे, उस समय सिनेमा शायद नहीं था, तो अनुभवंतम ऐसी कुछ लेफ्ट इन Invoking songs, they were singing and hasantam and laughing and smiling and anantike. But koi badhai nahi, ye ek aurat aur ek shudra aur ek shudrani ko dekha. Ye brahman dekhi itna qualified hote hue bhi samne mein jab dekhta hai तो उसका मन जरूर विचलित हो जाता है, वो तो बालक है, युवक है। और एक ब्राह्मण बालक ठीकुदा सभी ऐसे देख करके कितना उनका पतन हुआ था वो तो आगे मालूम होगा। और हम लोग रोजाना देखते हैं, अगर रास्ता में नहीं है रास्ता में भी है और उसको तस्वीर सिनेमा में भी दिखाया जाता है, तो किस तरह से युवक वो अपना ब्राह्मण धर्म में प्रतिष्ठित रहेगा, असंभव है। एक दफे देख करके अजामिल का कितना पतन हुआ था, वो फिर चोर बन गया, डाकू बन गया, ठग बन गया और जो कुछ होने का था उसको सब हुआ था। और एक दफे देख करके एक शूद्र शूद्रानी का आलिंगित देख करके और हम लोग रोज देख रहे हैं सिनेमा में, तो हमारा कितना पतन हुआ है और होने वाला है वो आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। ये कलयुग है, इसलिए ये जो भारतीय कृष्टि वैदिक सभ्यता इसको साधारण तौर से रक्षा करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कलयुग जैसा बीमार है ऐसा दवाई भी है। ये शास्त्र में ऐसा बताया है कि कलयुग जो है ये दोष का निधि है, समुद्र है दोष का, इतना दोष है। ये भागवत में 12वें स्कंध में बताया गया। तो इसके लिए दवाई क्या है, दवाई भी बताया, वो क्या चीज है, कलौ दोष निधि राजन अस्ति जी को महान गुण। महाराज परिचय कलयुग में सब तो दोष ही दोष है, बाकी उसमें एक महान गुण है। वो क्या गुण है, न कीर्तना देव कृष्ण मुक्त संग परम ब्रज, केवल कृष्ण कीर्तन करके हरे कृष्ण नाम जप करके वो सब पाप से मुक्त हो जाता है और फिर वैकुंठ में जा सकता है। ये हरे कृष्ण मूवमेंट का ये तात्पर्य है। जो ये सब जो पतन हुआ है कलौ अस्मिन् युगे जना प्रायेण अल्प आयु, ये कलयुग में सभी प्राय अल्प आयु होते हैं और आयु कमते ही जाता है। आस्ते आस्ते इतना कम हो जाएगा कि आगे जाकर के 20 से 30 वर्ष तक अगर जिएगा उसको बहुत बुढ़ा माना जाएगा, ऐसा शास्त्र में लिखा है। अभी तो 50 तक है, इंडिया का एवरेज स्केल है 35 ईयर्स और समथिंग दैट। तो प्राय अल्प आयु से एक कलि युग में सब अल्प आयु हो गए, और प्राय ने अल्प आयु से करो वर्ष जीवी जना, और परमार्थिक ज्ञान लाभ करने के लिए, मुक्ति होने के लिए इसको प्रयास नहीं रहना। तो इस स्थिति में शास्त्र में इसीलिए बताया है जो हरे नाम ही केवलम कलो नास्तेव कलि युग में ये यदि कोई उद्धार होने को चाहते हैं, लिबरेटेड का अर्थ होता है कि ये जो जन्म मृत्यु है जरा व्याधि, ये स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। जीव जो है नित्य शाश्वत होयं, ये तो नित्य है, ये मरने वाला नहीं है, शाश्वत। न हन्नते हन्नमानी शरीर, और ये शरीर जो उपस्थित शरीर है ये नष्ट हो जाने से जीवात्मा नष्ट नहीं होता, उसका और एक शरीर मिलता। तथा देहांतर प्राप्ति, तो यदि मैं और आप सब नित्य है और भगवान भी नित्य है, नित्य नित्यानां चेतन चेतनानां, भगवान भी नित्य वस्तु है चेतन वस्तु है, और हम लोग भी नित्य वस्तु है चेतन वस्तु। तो भगवान चाहते हैं कि तुम जो नित्य वस्तु है, तुम्हारा जन्म मरण नहीं है, तुम जो जन्म मरण माला में फंसे हुए है इससे निकल आओ, इसका नाम है मुक्ति, इसका नाम है मुक्ति। मुक्ति परेशान स्वरूपेना अवस्थिति, मुक्ति हित्या अन्यथा रूपम स्वरूपेना अवस्थिति, ये मुक्ति का विश्लेषण है कि अभी हम लोग स्वरूप भूल गया, स्वरूप हमारा है, हम कभी मरने वाला नहीं है, और अभी हम मरते हैं, एक शरीर पलट के और शरीर ग्रहण करते हैं, फिर शरीर 84 लाख जोनी है उसमें घूमते फिरते हैं, ये हमारा बंधन, ये बंधन से मुक्त होने से उसको मुक्ति कहा जाता है। स्वरूप इन अवस्थित, स्वरूप का अर्थ होता है हम मरने वाला नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दूषानु दर्शन, इसलिए भगवान कहते तुम सब दुख का सब हल किया है, ये असल तुम्हारा जो दुख है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका हल करो। ये जो हमको 10, 20, 50, 100 वर्ष ज्यादा से ज्यादा छोड़ करके फिर मरने पड़ता है, फिर दूसरा शरीर ग्रहण करने पड़ता है, यही हमारा असल दुख है, और इससे जब हम मुक्त हो जाएंगे फिर हमको जन्म नहीं होने वाला है, मरण नहीं होने वाला है। जिसका जन्म नहीं होता उसका मरण भी नहीं होता, उसको बाध्यत्व भी नहीं होता है, तो जन्म होने से ये सब चीज होगा। तो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, ये भगवद गीता की शिक्षा है, जो जन्म मृत्यु से आप लोग सब मुक्त हो जाएंगे। और कैसे, केवल कृष्ण को समझिए, बस एक ही काम, जन्म कर्म समी दिव्यम जो जाना थी तो जो कृष्ण अजो भी सनभ्य आत्मा, भगवान कहते हैं हम अजो होते हुए भी हम देवकी नंदन होते हैं, जसरा नंदन होते हैं, कुछ हमारा कारण है, तो ये कारण तो कोई समझे, जन्म कर्म समी दिव्यम जो जाना थी तत्व, ये भगवान क्यों सीधा मनुष्य का रूप से आते हैं और देवकी नंदन होते हैं, जसरा नंदन होते हैं, और फिर जब लीला करते हैं, इसको समझो। जन्म तो दिव्यम ये है, दिव्यम साधारण नहीं है, तो इसको अगर कोई समझ गया, जन्म कौन मन सुनिए दिव्यम से जाना थी तत्व प्राप्ति, उसको क्या लाभ होता है, मुक्त हो जाए। तत्ता देहम पुनर्जन्म नहीं थी माँ में थी तंत्र, उसको फिर ये शरीर छोड़ करके और भौतिक शरीर नहीं मिलता है, फिर किधर जाता, माँ में वो हमारे बच्चा ले आते हैं वैकुंठ में, तो उधर जाने से जद गत्या निवर्तन से तद धाम परम, जो वैकुंठ में जाने से है, फिर उसको लौट नहीं पड़ता है, फिर उसको भौतिक शरीर धारण करने को नहीं पड़ता है, फिर वो निरंतर जीवन और ज्ञानमय जीवन और आनंदमय जीवन, आनंदमय अभ्यास फिर इसको अर्जन करना चाहिए। ये इसलिए मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर वो कुत्ता भाई के लिए केवल खाया पिया और मजा किया और मर गया, ये मनुष्य शरीर नहीं है। मनुष्य शरीर इसलिए है कि भगवान को समझे। तो एक दिन हमको कोई पूछ रहा था कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है कि भगवान का चरण में शरणागत हो जाओ, बस सब काम बन जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और उसमें क्या लाभ होगा? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा कुछ। आदमी का दुख होता है पाप से, और जो भगवान का शरणागत हो जाते हैं फिर उसका कोई दुख नहीं रहता है। अनन्न चिंतन तमाम जी जना पर चुका सती तीसाम नित्यादि दुखता नाम योग क्षेम वहां। तो इस पिछले पांच मोमेंट का भी तात्पर्य है कि किसी तरह से भगवान का चरण में शरणागत हो जाए, फिर आपको सब दुख मिट जाएगा, कोई चीज का अभाव नहीं। हम लोग सब अभाव के लिए सब समय परिश्रम करते हैं। मनस्थानी इंद्रियानी प्रतिष्ठानी कर सकते, तो अभाव निर्वाह करने के लिए, उसको पूर्ण बनाने के लिए मन और इंद्रिय से हम लोग काम करते हैं। मनस्थानी इंद्रियानी प्रतिष्ठानी कर सकते, तो परिस्थिति में नहीं होगा। जैसे कोई आदमी जेल में है, वो जेल सुपरिंटेंडेंट को अगर किसी तरह से सुखी करे तो उसमें उसको काम नहीं बनेगा, जब तक गवर्नमेंट उसको नहीं छोड़ देने का आज्ञा देता और नहीं छूटे। तो इसीलिए हम लोग जो ये भौतिक जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, मनस्थान इंद्रियानी प्रतिष्ठानी कर सकते, मुंबई वांश जीव भूत जीव लोक सनातन, भगवान का जो जीव है जीवात्मा ये सब हमारा अंश है। बाकी वो इधर मन और इंद्रिय इंद्रिय द्वारा सुखी होने को चाहते हैं, मन इंद्रियानी प्रतिष्ठान कर सके, कर सकती मन स्ट्रगलिंग बट ही इज नॉट हैप्पी। बाकी वो हैप्पी कैसे होगा कि अपने बुद्धि से स्ट्रगल करके सुखी होने की जो चेष्टा चल रही है वो उसमें नहीं हो, तो फिर कैसे होगा? न भोक्तारम जगत तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति। वो जो मेंटल कॉन्कॉक्शन क्रिएशन करते हैं, ये प्लान किया जाए तो हम लोग सुखी हो जाएंगे, ये प्लान किया जाए तो कभी नहीं हो, क्योंकि वो मन का प्लान है, वो भगवान का प्लान नहीं है। और दुनिया में भगवान का प्लान चलता है, हमारा मन का तुम्हारा मन का प्लान नहीं चलेगा। हम प्लान क्या है जो हमको अच्छी तरह से मकान बनाए, बैंक बैलेंस बनाए और हम कभी मरेगा नहीं और इसको भोग करेंगे, ताकि भगवान का प्लान है तुमको मरने ही पड़ेगा, इसको सब छोड़ने ही पड़ेगा। तुम क्या प्लान बनाओ? कुछ प्लान नहीं बनेगा। सर्वहरम मृत्यु अहम, भगवान बोलते हैं जब मृत्यु रूप से तुम्हारा सब चीज छीन लेंगे, बस कोई चीज तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, बस ऐसी आए हो ऐसी जाओगे, एक शरीर दिया था अभी और एक शरीर मिलेगा, बस ये प्लान है हमारा। देवी जैसा गुणमयी ममो माया दुरुस्त, ये भगवान की माया की प्लान है, इसको आप अतिक्रम नहीं कर सकेंगे, दुरुतिक्रम इट इज नॉट पॉसिबल। You may try your best struggle, but it is not possible. तो मामे मजब प्रवर्तनते माया में तांग तरंति से, जो भगवान का भक्त हो जाते हैं वो फिर नई प्लान बनाते हैं। वो तो भगवान का चरण है अपने को छोड़ देता है, जो भगवान आप ही का प्लान चलता है और अब आपका चरण में मुझको हम समर्पण कर दिया, जो प्लान आपको बनाना है बनाइए। थैंक यू वेरी मच। हरी ओम।